छठे स्कंद में 12 महाजनों का उद्देश्य आता है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु। जब पहले यहाँ पे आया था तो पहले 4 महाजन थे, स्वयंभू नारद शंभु और कुमार, इनके बारे में हम चर्चा की है। कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वयास खीर वयम। पर बाकी सब जो इस सभी के 10 बाकी है उनके बारे में जो चर्चा है वो हम आज में करेंगे। तो ये 12 महाजनों में कपिल देव अकेले विशेष है कि वे स्वयं भगवान के अवतार हैं, बाकी सब जो है भक्त है, भगवान के महान भक्त है, और वे महाजन के रूप में हमारे सबके लिए आदर्श स्थापित कर रहे हैं। तो जो कपिल है, तो मैं जब पहले बार इस्कॉन से परिचित हुआ तो किताब देखा मैंने, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला। तो पहले मैं जब देखा तो मुझे तो पहले कपिल ये नाम एक क्रिकेटर था कपिल नाम का, उसकी स्मृति में। तो वास्तव में भारत में ऐसे है कि सब लोगों के जो नाम होते हैं जो वो किसी न किसी भगवान के अवतार से संबंधित है। तो प्रभुपाद जी ने जब किताब टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला इसके नीचे लिखा सन ऑफ देवहूति, कि देवहूति के पुत्र। तो प्रभुपाद जी को पूछा गया कि ये इस तरह से किसी और किताब में हम लिखा नहीं है, अगर किसी का लिखना है टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद तो प्रहलाद की शिक्षा है कयादु का पुत्र, या ऐसे किसी का लिखा नहीं है कहीं। तो यहाँ पे ऐसे प्रहलाद कपिल देव की शिक्षा तो देवहूति का पुत्र ऐसे लिखने के वो जरा अजीब लगता है। अगर किसी का परिचय देना है, हम ये व्यक्ति प्रवचन दे रहे हैं और ये व्यक्ति इस व्यक्ति के पुत्र है, अगर वो मतलब वो व्यक्ति अगर विख्यात है तो व्यक्ति का पुत्र है ऐसे लिखना वो कुछ हम संदर्भ लिख सकते हैं। पर अगर खास करके पाश्चात्य देशों में, पर भारत में भी जितने भगवान के अवतार है जो राम कृष्ण नरसिंह ये सब प्रसिद्ध है, वराह वामन भी लोग जानते हैं, पर कपिल ये अवतार है इसके बारे में लोग जानते नहीं है। और उनकी जो माता है देवहूति उनको तो लोग बिल्कुल परिचित नहीं है अधिकांश रूप से। तो फिर प्रभुपाद जी ने क्यों लिखा, प्रभुपाद जी तो वक्त जो प्रभुपाद जी के बीबीटी में जो छापने वाले जो भक्त थे वो बोले प्रभुपाद जी ये थोड़ा अजीब लग रहा है, क्या हम इसको निकाल सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले लिखना बहुत जरूरी है। बोले क्यों, प्रभुपाद जी बोले कि जो कपिल है इस नाम के दो व्यक्ति है इतिहास में महत्वपूर्ण, कपिल ये नाम बहुत लोगों का था पर जो तत्व ज्ञान सिखाने वाले कपिल नाम के दो व्यक्ति हुए हैं। तो जो भारत में भारत के बौद्धिक इतिहास में 6 षट दर्शन जो है 6 दर्शन ये विख्यात है, तो उनमें से एक दर्शन, दर्शन मतलब तत्वज्ञान की पद्धति, एक दर्शन है सांख्य। तो संख्या मतलब गिनना, जब कोई बालक होता है बढ़ता है तो संख्या गिनना सीखता है, ये कितने आम है 1 2 3 4 तो संख्या कहते हैं। तो उस संख्या और सांख्य इसका संबंध क्या है, सांख्य का अर्थ है कि जो गणना करता है, जो तत्वज्ञान जो विचारधारा गणना करती है उसको सांख्य कहते हैं। तो गणना किस चीज की करनी है, गिनना है तो उसमें तत्वज्ञान की क्या बात है, कितनी चीजें सामने लेके आओ गिनो, तत्वज्ञान क्या है इसमें। पर तत्वज्ञान यह है कि यह गिनने का प्रयास कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत में वास्तव में क्या क्या चीजें अस्तित्व में है। हम कहते कह सकते हैं कि अगणित चीजें अस्तित्व में है, इतने सारे मोटर कार है, इतने सारे घर है, इतने सारे मोबाइल है, इतनी सारी चीजें हैं। पर जो तत्वज्ञानी दृष्टि होती है वो देखती है कि ठीक है ये सब वस्तुएं हैं, पर ये सब वस्तुएं किस चीजों से बनी है, मूलभूत तत्व क्या है। और वो मूलभूत तत्व समझना जो है वह तत्वज्ञान की खोज होती है। तो तत्वज्ञान से देखा जाए तो ऐसे बताते हैं कि इस भौतिक जगत में जितने भी तत्व है उनकी गणना 24 चीजों में की जाती है। तो भगवद गीता के 13वें अध्याय के 6 और 7वें श्लोक में भगवान सांख्य का विश्लेषण करते हैं, बताते हैं महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचरः। वो कहते हैं महाभूतान्य अहंकारो महाभूतानि, महाभूतानि मतलब ये विशाल तत्व है, विशाल तत्व क्या है, भूमिर आपो नलो वायु खम, ये 5 चीजें जो है। अगर हम कोई भी चीज देखते हैं, अगर मैं ये ग्लास देखता हूं तो ये ग्लास किस चीज से बनाया है, इसमें भूमि है, और भूमि को फिर
थोड़ा गर्म किया जाता है उसमें अग्नि आती है, थोड़ा पानी डाल दिया जाता है उसे कि उसके परिवर्तन हो सके। तो इस तरह से अगर कोई भी चीज हम देखेंगे इस भौतिक जगत में, भूमिर आपो, आपो मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, फिर वायु मतलब हवा, और खम, खम जो होता है आकाश, इन चीजों के समन्वय से बनी है। और उसी तरह से महाभूतानि अहंकारो, तो अहंकार जो है, जो मिथ्या अहंकार जो होता है, जीवात्मा का वर्धन करता है, वह है बुद्धि अव्यक्तमेव च, कि बुद्धि है और फिर जो प्रधान अव्यक्त है वह है इंद्रियाणि दशैकं च, तो हमारे 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, और फिर दशैकं च, एक और कौन सा है, मन है, पंच चेन्द्रिय गोचर, और इंद्रिया के वस्तु है रूप रस स्पर्श गंध आदि, ऐसे 5 वस्तु है। तो ऐसे जो होते हैं ये 24 तत्व होते हैं। तो ये जो इस तरह से भौतिक जगत में जो भी है, अगर कोई व्यक्ति अभी कुछ स्वादिष्ट चीज से आकर्षित जाता है तो क्या है उसमें, वो पृथ्वी वायु जल अग्नि इनके समन्वय से बना है, और उसमें रूप रस गंध ये सब आगे आ गए, तो उस तरह वो आकर्षित बन गया है। तो ये सब ऐसे विश्लेषण करने की जरूरत क्या है, इसकी जरूरत यह है कि व्यक्ति समझता है कि वास्तव में अगर मैं भूमि देखूंगा तो इसमें मुझे आकर्षित नहीं है, पानी देखूंगा तो उसमें ठीक है पीने के लिए ठीक है, पर पानी को प्रेम करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पीछे पागल होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के विश्लेषण से व्यक्ति समझ जाता है कि इस भौतिक जगत में वास्तव में आकर्षक कोई चीज है नहीं, सब भौतिक तत्वों से ही बनी है, और इसीलिए मुझे इसके परे कुछ देखना चाहिए। तो फिर 24 तत्वों के परे 25वां तत्व जो है वह है आत्मा, और हम सब वास्तव में है, 26वां तत्व जो है वह है भगवान। तो इस तरह से सांख्य में खोज की जाती है कि जो परम सत्य परम आकर्षक चीज क्या है, उसके लिए जो खोज करना तत्व ज्ञान है उसको सांख्य कहते हैं। और इसका शिक्षण कपिल देव ने श्रीमद भागवतम में दिया है 3रे स्कंद में, और फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि एक और कपिल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने भी अपना तत्व ज्ञान दिया, उसको भी उन्होंने सांख्य ही कहा, पर वो जो कपिल थे वो नास्तिक थे, और इसीलिए प्रभुपाद जी बोले थे कि ये कपिल जो है श्रीमद भागवतम बताया गया है वो भक्त है, और इसीलिए वो देवहूति के पुत्र है, इससे वो नास्तिक कपिल और महाजन कपिल उनमें भेद करने के लिए प्रभुपाद जी ने जोर दिया है। तो जो कपिल देव है उनके हम जीवन शिक्षाओं के बारे में थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, और उनके कार्य इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो श्रीमद भागवतम के 3रे स्कंद के इनकी जो लीला है ये 21वें अध्याय से 33वें अध्याय तक चलती है, वास्तव में 21, 22, 23 अध्याय जो है वो पार्श्वभूमि तैयार की जा रही है। 24वें अध्याय में कपिल देव का जन्म होता है, और 25वें अध्याय से 32वें अध्याय तक, मतलब 8 अध्याय लगभग जो है कपिल देव शिक्षा देते अपनी माता को देवहूति को, और फिर 33वें अध्याय में कपिल देव जो है अब वो सिद्धाश्रम जो है गंगा सागर के तट पे वहां पर जाके ध्यान में मग्न हो जाते हैं। उनके कार्य के बारे में जो वर्णन है वो 33वें अध्याय में के भागवतम में है, तो वहां से हम प्रधान रूप से चर्चा करेंगे, पर पहले थोड़ी पार्श्वभूमि से चर्चा करेंगे। जैसे मैं पहले बताया था इस ब्रह्मांड की सृष्टि होती है तो सबसे पहले जीव कौन उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र कौन थे, चतुष कुमार थे, और कुमार ने कहा कि हम संतान उत्पत्ति नहीं करेंगे, तो वे अखंड ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। ब्रह्मा जी थोड़े क्रोधित हो गए, उसके बाद में रुद्र की उत्पत्ति हो गई, शिवजी उनके क्रोध से उत्पन्न हो गए। फिर उसके बाद में प्रजापति उत्पन्न हो गए, प्रजापतियों की सेवा होती है कि ये सारे ब्रह्मांड में प्रजा की उत्पत्ति करना। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के ही एक पुत्र है कर्दम मुनि, और जो कर्दम मुनि थे वे क्योंकि ब्रह्मा जी के ही पुत्र है और महान आत्मा है, वे भौतिक जगत से अनासक्त थे। तो अनासक्त थे, वे ध्यान में लग गए, और जब इस तरह से ध्यान में लग गए, वे ध्यान में भगवान का ध्यान जब कर रहे थे तो इतने लीन हो गए भगवान के ध्यान में कि वे भगवान के स्मरण के आंसू आ रहे थे, और उनकी तपस्या को देखकर भगवान की आंखों में आंसू आ रहे, कितने मेरे लिए तपस्या कर रहे हैं। तो जो आंसुओं से जो एक वास्तव में तालाब बन गया, वहां बहुत पवित्र तालाब है, फिर बाद में जब भगवान तपस्या को देखकर स्वयं के सामने प्रकट हो गए, और जब प्रकट हो गए तो उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की भगवान के लिए, और फिर भगवान ने कहा कि हे ऋषि, तुम्हारी मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में इच्छा क्या है, इसीलिए मैं तुम्हें बता दूंगा कि वास्तव में इसके पहले जब प्रार्थना करते हैं कर्दम मुनि, तो तभी वास्तव में वे बताते हैं कि हे प्रभु, अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और आपसे कोई भौतिक इच्छाओं की मांग करता है तो वह व्यक्ति वास्तव में बड़ा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि किसी लखपति के पास जाता, करोड़पति का जाता है और उसमें 5 पैसे मांगता है, तो फिर वह कितनी मूर्खता की बात है। उसी तरह से है प्रभु, आप तो मुक्ति प्रदान कर सकते हो, आप शाश्वत आध्यात्मिक जगत में वास प्रदान कर सकते हो, तो आपके पास अगर कोई भौतिक चीज मांगने आता है तो वो कितना मूर्ख है। तो वास्तव में कर्दम मुनि ये बता रहे हैं, पर उसके बाद में हम विडंबना देखते हैं कि उनके हृदय में अभी तक भौतिक इच्छा है और वे चाहते हैं कि वे विवाह करके एक संतान उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ऐसे क्यों है? इसका वास्तव में उत्तर 24वें अध्याय बाद में मिलता है, जब ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी कर्दम मुनि से बहुत प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम्हें मुझे इस ब्रह्मांड को प्रजा उत्पन्न करने में मदद करनी चाहिए, तो तुमने बड़ा ध्यान पूर्वक मेरे आदेश का पालन किया है, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और तुम्हें अभी ये इस तरह से आदेश पालन करने के कारण तुम्हें एक आशीर्वाद मिल रहा है। वो आशीर्वाद क्या है कि परम पुरुषोत्तम भगवान जो है वह तुम्हारे संतान के रूप में तुम्हारे पत्नी के गर्भ में भी उपस्थित हो गए हैं। तो यहाँ पे जो कर्दम मुनि का ये भौतिक इच्छा नहीं है, एक तरह से हम कह सकते हैं भौतिक इच्छा है, पर वो आध्यात्मिक है, क्योंकि उससे भगवान स्वयं उत्पन्न होते हैं, वो उनके जो गुरु और पिता है उनकी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। तो कर्दम मुनि जो बताते हैं इस तरह से कि भगवान कर्दम मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान सुंदर रूप उनके सामने विद्यमान है, वो कहते हैं कि जरूर आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और बताते हैं कि स्वयंभू मनु जो है, जो उस समय सारे विश्व के राजा है, वे आएंगे और वो अपनी राजकुमारी जो है देवहूति, वह तुम्हें अपने पत्नी के रूप में प्रदान करेगी, और फिर उनसे तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी और विश्व का भी कल्याण होगा। फिर भगवान वहां से दृश्य हो जाते हैं, और फिर कुछ ही समय के बाद स्वयंभू मनु वहां पे आते हैं, और स्वयंभू मनु वे आकर फिर कर्दम मुनि का गुणगान करते हैं, तो कहते हैं उनसे कि वास्तव में हम यहाँ के राजा हैं, पर हमारा जो राज्य है उससे हम लोगों का कल्याण नहीं कर सकते हैं। वास्तव में आप जैसे ऋषिगण जो है वह आध्यात्मिक ज्ञान देकर, एक आध्यात्मिक उदाहरण प्रदर्शित करके, आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना है उसका उदाहरण प्रदर्शित करके लोगों का कल्याण करते हैं, और हम आपके सेवक के रूप में आपको सहयोग करते हैं, यह हमारा सौभाग्य है। तो जब यह कर्दम मुनि सुनते हैं वे कहते हैं वास्तव में जो ब्राह्मण है वे समाज का कोई कल्याण नहीं कर पाएगा, जबकि क्षत्रिय जो धर्म का रक्षण नहीं कर पाएगा। तो जो समाज में अगर कल्याण होना है तो दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक है शास्त्र और दूसरा है शस्त्र। शास्त्र ये ब्राह्मण बताते हैं और शस्त्र एक क्षत्रिय चलाते हैं, और दोनों के संयोग से समाज का कल्याण होता है। जैसे कि शरीर को चलना है, शरीर को बुद्धि और मन दोनों चाहिए, तो जो बुद्धि है उसकी तुलना ब्राह्मण से की जाती है और जो मन है उसकी तुलना क्षत्रिय से की जाती है, क्योंकि मन का संपर्क शरीर से बहुत अधिक होता है, बुद्धि का उतना नहीं होता है। बुद्धि मन के माध्यम से शरीर को नियंत्रित करती है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अभिष्टाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। भगवान बताते हैं कि सारी जो इंद्रियां हैं वह मन में केंद्रित है, और फिर भगवान कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा आप मन का नियंत्रण करो, उससे सारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएगी। तो बाकी सारा जो समाज है उसका नियंत्रण कौन करता है? जो राजा करता है, और फिर राजा को मार्गदर्शन कौन देता है? वो ब्राह्मण देते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय और उनके द्वारा सारे समाज का कल्याण होता है। तो यह जो उदाहरण है कि स्वयंभू मनु एक क्षत्रिय है और कर्दम मुनि एक ब्राह्मण है और उन दोनों में एक आदर का संबंध है। और फिर स्वयंभू मनु कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप अभी तपस्या कर रहे हैं पर आपने अखंड ब्रह्मचार्य का व्रत नहीं लिया है, तो इसीलिए कृपया आप मेरी जो पुत्री है उसको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो कर्दम मुनि फिर कहते हैं कि हाँ ये मेरे पिता का भी आदेश था। यहाँ पे बताते नहीं है पर उनके मन में विचार होता है भगवान ने वो योजना बनाई है, उसको स्वीकार करते हैं। और फिर यहाँ पे जो देवहूति है उसके जीवन में इतना परिवर्तन हो जाता है कि इसके पहले वो एक राजकुमारी है, बिल्कुल ऐश्वर्य में रह रही है, और अचानक अभी वे एक ऋषि जो जंगल में केवल एक कुटिया में रह रहे हैं उसकी पत्नी बन जाती है और उनको बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। पर तपस विश्रम्भेण सेवया, और बताया गया है भागवतम में कि वे अपने पति की बहुत आदर पूर्वक स्नेह पूर्वक और ध्यान पूर्वक सेवा करती है। अब प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह उसी तरह से है जैसे शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए, जो भी तपस्या जरूरी होगी वो तपस्या स्वीकार करनी चाहिए। और फिर काफी समय तक जो कर्दम मुनि है बहुत तो ऋषि होते हैं, वो तपस्या में रहते हैं, यज्ञ में रहते हैं, ध्यान में रहते हैं और देवहूति उनकी सेवा करते रहती है। और फिर बाद में एकाएक वो ध्यान खुलते हैं और देखते हैं कि देवहूति जो है वह वास्तव में भी शिथिल हो गई है, क्योंकि तपस्या के कारण उसका शरीर जो था वह तपस्या के चिन्ह उसमें से भाग है। और फिर वो उसकी सेवा को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता इसके लिए। और क्या है? कहते हैं कि वो मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं तुम्हें जिससे कि तुम जो इस तृष्णा और शोक इन दोनों से मुक्त हो जाओगे। मतलब क्या भगवत कहते हैं? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। भगवता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि जो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है व्यक्ति वह न शोचति, वह शोक नहीं करता है, न कांक्षति, वह जो है कुछ आकांक्षा नहीं करता है। वास्तव में क्या होता है, ये दो चीजें जो है इससे हमारा मन हमेशा उतावला रहता है। जो हम शोक होता है वह भूतकाल के बारे में करते हैं, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ये ऐसे क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया, ये वैसे ऐसे ऐसे जो सारा हम शोक करते हैं। महाभारत में बताया गया है कि व्यास देव युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, युधिष्ठिर महाराज जब विलाप कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं अभिमन्यु के वध के बाद, ये महाभारत युद्ध के 12वें दिन की बात है, वे कहते हैं हे महाराज आप शोक ग्रस्त मत हो जाओ क्योंकि शोक एक ही काम करता है। क्या काम करता है? कहता है जो व्यक्ति शोक कर रहा है उसकी शक्ति का नाश करता है। वह कहते हैं कि कैसे होता है कि भूत है, वर्तमान है और भविष्य है। जो शोक है वो अभी भूत से वर्तमान का आकार हमें भविष्य की तैयारी करनी है, पर भूत जो शोक है वह भूत भूत एक बाजू में भूतकाल मतलब भूत भूत नहीं भूतकाल जो भूतकाल एक जगह में है और वर्तमान और भविष्य दूसरी जगह में, तो इन दोनों में एक दीवार बना देता है और हमारा जो चेतना है वो भूतकाल में अटका देता है। तो उससे क्या होता है, उस तरह से चेतना अटक जाती है तो हम कुछ कार्य नहीं कर पाते, हम केवल एक भूतकाल में जीते रहते हैं और शोक से हमारी सारी शक्ति विलाप कर देते हैं और हम देखते हैं हमारे में मन इस तरह से बहुत शोक करते रहते हैं। उसे से आकांक्षा जो होती है वो क्या करते हैं, कई बार वह हमारी चेतना जो है वो भविष्य में डाल देती है, भविष्य और वर्तमान में एक दीवार खड़ा कर देते हैं। तो अभी हमारे पास वास्तव में केवल वर्तमान ही है, वर्तमान काल है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, और वर्तमान काल में अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भविष्य काल भी आएगा तो वो जब आएगा तो वर्तमान काल बन जाएगा, और अगर मन अनियंत्रित है तो जब भविष्य काल वर्तमान काल बनेगा तभी हम भविष्य काल में ही रहेंगे, तो फिर क्या होगा, हम कभी कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए शोक और आकांक्षा, ये जो है तृष्णा, ये दोनों हमारी हमारी जो मानसिक शक्ति है उसका हमेशा ह्रास करते रहते हैं। और हम हमारे जीवन में भी ये देख सकते हैं कि कई बार हम जो हाथ में कार्य है वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इन दो चीजों में हमारा मन चला जाता है। तो जो मन है यह एक बहुत बेचैन पंछी के समान है, और ये पंछी के दो पंख है, एक पंख है शोक और दूसरा पंख है आकांक्षा। तो क्या है, पंछी को एक जगह पे रखना है तो क्या उसके पंख काट डालते हैं, तो फिर काट डालते हैं तो क्या होता है, वो चुपचाप बैठ जाता है, कुछ नहीं करता। तो उसी तरह से अगर ये शोक और आकांक्षा ये दोनों को हम कम कर सकते हैं तो उतना हम वास्तव, ऐसे नहीं है कि हमें मायूस हो जाना है, कुछ कार्य नहीं करना है, नहीं, जो हाथ में कार्य है वो करने के लिए हमें इन दोनों को कम करना जरूरी है। तो यह आशीर्वाद देवभक्ति को देते हैं, और यह आशीर्वाद जब हम गुरुदेव की सेवा करते हैं तो उनके आशीर्वाद से हम भी शोक और आकांक्षा इन दोनों से मुक्त हो सकते हैं। और उसके बाद में जब इस तरह से वो बड़ी ध्यानपूर्वक सेवा करते हैं तो फिर क्या होता है, उसके बाद वह कहते हैं आपकी कुछ इच्छा है तो मुझे बताओ। तो कहते हैं कि अब मुझे आप संतान चाहिए। तो फिर तभी वहां पे इतना सात्विक वातावरण होता है वो ऋषि के आश्रम में, तो कहते हैं कि ऐसा सात्विक वातावरण जो है वह उचित नहीं है सत्ता उत्पन्न करने। और आप एक राजकुमारी हो तो एक बहुत ही आलीशान न केवल अपनी योगिक स्थिति से महल बनाते हैं, पर वो महल एक हवाई जहाज के रूप में होता है, विशाल हवाई जहाज जो महलों से भी बड़ा है, और उसमें कपिल जो कर्दम मुनि है और देवहूति वे सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करने लगते हैं। तो कर्दम मुनि क्या कर रहे हैं, वो देवहूति ने जो प्रामाणिक सेवा की है उसके लिए उसे भेंट प्रदान कर रहे हैं, और फिर उनके कई कन्याएं होती है, और जब कन्याएं हो जाती है तो नौ कन्याएं होती हैं उनकी। और फिर कर्दम मुनि वो कहते हैं कि अभी मैं आपकी इच्छा पूरी की है, अभी मैं वैराग्य लेके संन्यास, वैराग्य स्वीकार कर संन्यास स्वीकार करना चाहता हूँ। तो जब वो कहते हैं इस तरह से तो देवहूति मायूस हो जाती है, वो कहती है कि उनकी कन्याएं थोड़ी बड़ी हो गई है, कहते हैं कि वो तो अभी बाद में उनका विवाह हो जाएगा और वो चली जाएगी और मैं अकेले रह जाऊंगी, तो कृपया मुझे आप एक पुत्र दीजिए। तो कर्दम मुनि कहते हैं ठीक है। और फिर जब कपिल कर्दम मुनि के गर्भ में होते हैं तभी वास्तव में कर्दम मुनि अपनी दिव्य शक्ति समझ जाते हैं कि यहाँ पे भगवान स्वयं अवतरित हुए हैं, और ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जिसमें पहले बताया ब्रह्मा जी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और जब कपिल का जन्म होता है तो उस समय सारे विश्व में मंगलमय लक्षण हो जाते हैं, जो स्वर्ग में जो गंधर्व गा रहे हैं, अप्सरा नाच रहे, फूलों का वर्षाव हो रहा है, चारों ओर प्रसन्नता है। और इस तरह से कपिल देव जो है विश्व का मंगल करने के लिए, कल्याण करने के लिए वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। और जैसे ही वे अवतरित होते हैं तो फिर कर्दम मुनि उनको प्रार्थना करने लगते हैं, और कर्दम मुनि कहते हैं कि आप इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीवात्माओं को मुक्त करने के लिए प्रकट होते हो, तो मैं आपसे बहुत कृतज्ञ हूं कि आप यहाँ पे मेरे सामने प्रकट हो गए। और फिर अभी पुनः वे इच्छा व्यक्त करते हैं कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ ताकि मैं भगवान पे ध्यान कर सकूं। तो जो कपिल देव है उनके चेहरे पे थोड़ा, अभी वो छोटे बालक है, तो उनके चेहरे पे स्मित आ जाता, तो कहते हैं तो भगवान तुम्हारे घर में है, भगवान में ध्यान करना है तो फिर तुम्हें अभी घर से संन्यास लेने की क्या जरूरत है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे महान आचार्य है वे उनके सारार्थ दर्शी टीका में बताते हैं कि कर्दम मुनि जो है वो एक प्रजापति है, उनकी सेवा होती है प्रजा की उत्पत्ति करना, तो वो ये सेवा करते हैं, वो सेवा स्वीकार करते हैं अपने पिता का आदेश पालन करने के लिए, पर उनके हृदय में भक्ति है, वो सोचते हैं कि मुझे सारे विश्व का कल्याण करना है। कैसे करना है, मैं अकेला कल्याण नहीं कर सकता पर विश्व के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्थापित कर सकता हूँ, तो ये मेरा बड़ा भाग्य है कि भगवान मेरे घर में उत्पन्न जन्म लिया है उन्होंने, पर सब लोग घर में तो भगवान जन्म नहीं लेने वाले, तो अगर मैं घर में ही रहूंगा तो मैं घर में रहा ऐसा सोचकर बाकी लोग भी अपने घर में रहेंगे, तो तो क्या है, भगवान के व्यक्तिगत संग से भगवान की आराधना करना, भगवान का ध्यान करना, भगवान की सेवा करना, यह अधिक महत्वपूर्ण है। और यह उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए वह क्या करते हैं, घर का त्याग करते हैं और जंगल में चले जाते हैं। तो वैदिक संस्कृति में त्याग करना महत्वपूर्ण नहीं है या संग लेना महत्वपूर्ण है, भगवान का स्मरण करना महत्वपूर्ण है। तो कुछ लोग गृहस्थ आश्रम में लेकर भगवान का स्मरण करते हैं, कुछ लोग वैराग्य के संन्यास या ब्रह्मचर्य आश्रम में लेकर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो यह हर एक व्यक्ति के आश्रम के अनुसार, व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुसार यह निर्धारित होता है। और फिर जब इस तरह से कर्दम में चले जाते हैं तो फिर देवहूति कपिल देव के पास आते हैं और वो कहती है कि वो तो कपिल देव उनके हाथ रहते हैं, बड़े होते हैं, देवहूति उनकी देखभाल करती है। और फिर जब वो कपिल देव नौजवान हो जाते हैं तभी देवहूति आती है और वो विलाप करती है कि मेरे इतने ज्ञानवान पति थे और आप स्वयं भगवान के रूप में मेरे सामने प्रकट हुए हो, मेरे गर्भ से प्रकट हुए हो, पर फिर भी मैं अभी तक अज्ञान में ही फंसी हूँ। तो इस भौतिक जगत के आसक्तियों में बंधन में फंसी हूँ, तो कृपया आप मुझे, मैं इस अंधकार के अज्ञान में फंसी हूँ, तो आप कृपया मेरी आँख बन जाए और आँख बन के आप मुझे ज्ञान दीजिए। वो दो उपमा देती है कि जो मैं अंधी हूँ अज्ञान से, तो आप मेरे आँख बने। और कहते हैं कि मैं इस भवबंधन में फंसी हूँ, तो आप जो है मेरी कुल्हाड़ी बने, जिससे कि जो भौतिक जगत जो है उसको एक वृक्ष के समान तुलना दी है, तो उसको तोड़ सके। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, गीता के 15वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि असंग जो व्यक्ति है उसका एक शस्त्र है, उसे व्यक्ति बंधन से मुक्त हो सकता है। और जब यह सुनते हैं वो, तो कपिल देव स्मित करते हैं और फिर वो विस्तारित रूप से अपनी माँ को जो सांख्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो सांख्य का ज्ञान जो है वह इसलिए प्रदान करते हैं जिससे कि भक्ति के निष्कर्ष तक व्यक्ति पहुंच सके। तो वो बताते हैं विश्लेषण कर, जो सांख्य का ज्ञान है यह बड़ा ही जटिल है, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, पर यहाँ पर उसका निष्कर्ष बोलते हैं कि ये सारे भौतिक तत्वों को हमें समझना है, जिससे कि हम बाद में समझ सके कि इस भौतिक तत्वों में कुछ दम नहीं है, कुछ आकर्षण नहीं है, इसके परे जो भगवान है उनमें ही आकर्षण है और हमें उनके शरण में जाना है। और फिर वो तीसवें अध्याय में जो है, तो ये अभी तक जो मैं वर्णन करना हूँ ये 24वें अध्याय में श्लोक में था, वो 24वें अध्याय का था। फिर 25वें अध्याय से वो अपना उपदेश शुरू करता है और प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि ये जो उपदेश है यह वैज्ञानिक संशोधन के लिए बहुत ही उचित है, कि इसको अगर कोई वैज्ञानिक पढ़ते हैं तो उससे वे बहुत वैज्ञानिक जो है वो आध्यात्मिक रुचि रखते हैं, उनकी रुचि है जड़ तत्वों में, वो जो हमें दिखता है वो समझने का प्रयास करते हैं। कहते कि यह जो विश्लेषण है अगर वैज्ञानिक पढ़ेंगे तो उससे वो वैज्ञानिक संशोधन में बहुत प्रगति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कोई शिष्य है जो इस पर वैज्ञानिक संशोधन भी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट नाम की संस्था स्थापित की थी इस्कॉन से संबंधित, जो कि वैज्ञानिक संशोधन के लिए बनाई थी। प्रभुपाद जी कई शिष्य हैं जो भी वैज्ञानिक संशोधन भी कर रहे हैं। तो भागवतम में जो इस भौतिक जगत का वर्णन जो है विश्लेषण तीन बार आता है विस्तारित रूप से। पहले जो तीसरा स्कंद द्वितीय बार है, सबसे पहले जो भौतिक जगत का विस्तारित वर्णन द्वितीय स्कंद में आता है विराट रूप का वर्णन जो है, तृतीय स्कंद में जो है यह सांख्य में भौतिक तत्वों का वर्णन है, और पंचम स्कंद में जो है वह ब्रह्मांड की रचना का वर्णन है। और ये पंचम स्कंद तीनों जगह में क्या है कि भाव यह है कि इस भौतिक जगत का निरीक्षण करके, उसका विश्लेषण करके हम दो चीज समझते हैं कि ये इतना महान है, इतना विशाल है, इतना जटिल है कि यह अपने आप नहीं आ सकता है, यह भगवान की रचना से ही आया है। और दूसरा कि इसमें मुझे आकर्षित नहीं हो सकता, जो भी है ये केवल भौतिक है, इसके परे मुझे भगवान की ओर आकर्षित होना है। तो इसीलिए कपिल देव अपने उपदेश की शुरुआत में और अंत में वे बताते हैं कि आपको इस ज्ञान से आप भक्ति में और दृढ़ संकल्प हो जाओ। तो वास्तव में संपूर्ण श्रीमद् भागवतम में अगर तत्व ज्ञान का उपदेश जो है विस्तारित उपदेश है, यह जो कपिल संदेश जो है कपिल उपदेश, यह सबसे बड़े उपदेशों में से एक है। इससे बड़ा उपदेश जो है भागवत में एक ही बार आता है, वह है 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण जो उद्धव गीता बताते हैं उद्धव, वो भागवतम के 11वें स्कंद के 6 अध्याय से 30वें अध्याय तक आता है, लगभग 25 अध्याय है, काफी विस्तारित है। और यह जो है यह लगभग 8 अध्याय है, 25 से 33 तक, 32 तक, 33 में वापस पुनः वर्णन आता है। तो फिर ये अभी हम ये उपदेशों में नहीं जाएंगे, तो 33वें अध्याय का भी केंद्र में आएंगे हम। तो 33वें अध्याय में वर्णन आता है कि कपिल देव अपने उपदेशों को पूर्ण करते हैं। और फिर अभी पहली बार भागवत में वर्णन है कि देवहूति भगवान से प्रार्थना करती है। पहले जब वो प्रार्थना करती है वो केवल संक्षिप्त में प्रार्थना है, वो ज्ञान की याचना कर रही है, पर यहाँ पे थोड़े और विस्तारित रूप से वो भगवान का गुणगान करती है। और वह कहती है कि आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरे पुत्र के समान जैसे हो, पर वास्तव में जो आपसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, और जो ब्रह्मा जी आदि ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी का उनसे संबंध क्या है, देवहूति के वो पति के पिता है, उसका मतलब क्या है, हाँ फादर इन लॉ, ओके आप समझ गए। तो उनके तो बोले कि वो ब्रह्मा जी है, बहुत आदरणीय है वो, पर वह आपसे ही उत्पन्न हुए। तो वो कहते हैं कि ये आश्चर्य की बात है कि आप मेरे सामने बैठे हो और आपसे जो महान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, पर उससे बड़े आश्चर्य की बात है कि जिनके नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए वे मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए, यह कैसे संभव है कि आप एक छोटे से शिशु के रूप में आए थे। ठाकुर बताते हैं तात्पर्य में कि भगवान अपने मन ही मन जवाब देते हैं कि इस भौतिक जगत में छोटा शिशु होता है उससे सब लोग आकर्षित होते हैं, न केवल उनके माता पिता आकर्षित होती है, पर सब कोई उनसे आकर्षित, छोटा बालक होता है नया जन्म लेता है, रिश्तेदार आते हैं, मैं उठा सकता हूँ उसको, उठा के देखते हैं और फिर उससे उसको थोड़ा प्रेम दिखाते हैं, चुम्बन करते हैं, उससे थोड़ा गाल से खेलते हैं, तो सब लोग छोटे बालक से आकर्षित होते हैं। तो भगवान कहते हैं, सोचते हैं कि ये जो लोग, मैं अगर एक शिशु का रूप लूंगा तो जो लोग मेरे साधारण रूप में मेरे सर्वाकर्षक कृष्ण का रूप है उससे आकर्षित नहीं होते हैं, वे शिशु के रूप में भी आकर्षित हो जाएंगे। तो इसीलिए तो सारे पर यह शिशु जो है, भगवान जो शिशु का रूप लेते हैं वह, और जो एक कोई साधारण शिशु का शिशु है उसमें फर्क क्या है, वह भगवान जब ऐसा शिशु का रूप लेते हैं तभी वो कब लोग कब रहते हैं, वो रूप समृद्ध लोकान वटपत्र मध्ये शयान माद्यंत विहीन रूपम, ओ समृद्ध लोकान वटपत्र मध्ये, समृद्ध लोकान, जो विश्व का प्रलय होता है और सारे लोग विनष्ट हो गए, कोई भी ब्रह्मांड जीवित नहीं, वटपत्र मध्ये, तभी ये मार्कंडेय ऋषि के दृष्टि में वर्णन लीला बताई गई है कि कैसे सारे विश्व में प्रलय आ गया, सारी ओर जो विश्व संहार विश्व विनाश का सागर है वो फैल गया है, और उसमें एक छोटे से एक जगह पे एक वटवृक्ष का एक पत्र है, और उस पत्र पे एक छोटा सा बालक तैर रहा है, शयानमाद्यंत विहीन रूपम। उसमें अभी साधारणतः अगर कोई बड़ा तूफान आ जाता है तो सोया हुआ व्यक्ति भी उठ जाता है, पर भगवान यहाँ पे इतना बड़ा तूफान आ गया, इतनी बड़ी बाढ़ आ गई है कि सब कुछ उद्ध्वस्त हो गया, पर उसमें शयानम, उस आराम से सो रहे हैं, और वास्तव में एक छोटे से वटपत्र पे है शयानम आद्यंत विहीन रूपम। वो कह रहे हैं कि आदि ऐसे छोटे से बालक के रूप में है, पर ये जो व्यक्ति है न केवल उनका आदि है न उनका अंत है, और वो क्या करते हैं, सर्वेश्वरम सर्वहितावतारम सर्वेश्वरम, ये छोटे से बालक है पर सब ऐश्वर्य, सारे संपत्ति, सारे धन, सारी शक्ति, सारा सौंदर्य, सारा ज्ञान उनमें है, और उन्हें क्या उतार लिया है, अवतार लिया है हितावतारम, सब लोगों के हित करने के लिए अवतार लिया। और फिर ये बालक मार्कंड ऋषि देखते हैं ये बालक कौन है, तो एक साधारण बालक के जैसे वो क्या करते हैं भगवान, अपना पैर उठाते हैं अपने हाथ से और करावलम करारविंदेन मुखारविंदम पदारविंदे विनिवेशयन्तम पटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो बालम मुकुंदम, ऐसे जो मुकुंद है जो मुक्तिदाता है, ये बालक जो है उन्होंने एक बाल रूप लिया है, मनसा स्मरामि मैं उनका स्मरण करता हूँ। तो क्या विशेषता है, तो भगवान की जो सुंदर रूप है उसकी तुलना कमल से भी आती है। यहाँ पे तो भगवान के हाथ, भगवान का पैर और भगवान का मुंह, इन दोनों की तुलना सुनना एक कमल से की जा रही है। तो करारविंदे उन्होंने अपने हाथ से क्या किया है, पदारविंदम उन्होंने पैर पकड़ लिया। तो जब वो एक पटपत्र पे लेटे हुए हैं करारविंदे न पदारविंदम और वो पैर पकड़ के खींच रहे हैं, तो कई बार छोटा बालक होता है तो क्या करता है वह, उसको भूख लग जाती है तो कभी कभी दूध पीता है, कोई माँ से दूध पीता है, बॉटल से दूध पीता है, और फिर चखने की आदत पड़ जाती है तो क्या होता है अपनी उंगली पकड़ लेता है और उंगली चखते रहता है। तो कभी कभी लोग बड़े हो जाते हैं फिर भी आदत जाती नहीं उनकी। तो यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं, वो साधारण बालक का अनुकरण कर रहे हैं, और कर रहे हैं वो कहते हाथ की उंगली नहीं पैर की उंगली चख रहे हैं। करारविंदेन पदारविंदम, हाथ से उन्होंने हाथ रूपी कमल है उससे पैर रूपी कमल ने पकड़ लिया है, मुखारविंदे विनिवेशयन्तम और अपने मुंह में वो पैर की उंगली को डाल रहे हैं, और वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम और वो लेटे हुए हैं वट पत्र, और मार्कंड ऋषि देखते हैं और इस गुणा आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान वास्तव में अपना कमल, अपना चरण कमल क्यों चख रहे हैं, वह सोच रहे हैं कि मैंने इतने सारे भक्तों ने मेरी प्रार्थना की है और वह सब कहते हैं कि आपके चरण कमलों में जो रस है वह अद्वितीय है, जो इसका स्वरण इसका इसका जरा रस चख लेता है वह इस भौतिक जगत के किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होगा। तो भगवान विष्णु के हृदय में इच्छा होती है कि मेरे पैरों में क्या रस है, मैं चखना चाहता हूँ। पर भगवान सोचते हैं कि अगर मैं वैकुंठ में राज सिंहासन पे बैठा हूँ और अचानक में पैर उठा लूंगा तो वो अनुचित हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, हर एक लीला के लिए उचित रूप स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, एक बाल रूप लेते हैं। वैसे बताया गया है कि भगवान कृष्ण ये रसराज है, हर एक रस के लिए वो बड़ा बड़ी उचित योजना बनाते हैं। तो इसीलिए वृंदावन में भी अभी यशोदा माई है, वह कृष्ण से प्रेम करती है वो एक छोटे बाल रूप, पर जो गोपियां हैं ब्रज गोपियां वो कृष्ण से उनके युवा रूप में प्रेम करती है। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी योग माया से जो भी भक्त है उनके समय लीला करते समय उस प्रकार का रूप वो प्रदर्शित करते हैं। आनंद वृंदावन चंद्र का नाम का एक ग्रंथ है, कवि कर्णपुर ने लिखा है, उसमें बताते हैं कि जैसे कृष्ण सब अवतारों के स्रोत है उसी तरह से कृष्ण का जो यौवन रूप है, जो कैशोर रूप है, वह उनके सब रूपों का स्रोत है। तो इसीलिए भगवान का आदि रूप है कृष्ण रूप, और कृष्ण का आदि रूप है कैशोर रूप। तो कैशोर रूप से अगर भगवान जंगल में जा रहे हैं और अपने गोपों के साथ लीला कर रहे हैं तभी वे क्या करते हैं, एक कुमार रूप दर्शाते हैं, जिससे कि बाकी जो गोप है इसे मित्रों मित्रों में जो मैत्री होती है वह 5 से 10 साल के हृदय में के उम्र में सबसे अधिक हो जाती है मित्रों मित्रों में मैत्री। और फिर बाद में जब 11, 12, 13 साल आते तो क्या होता है, फिर तभी जो पुरुष और स्त्री का आकर्षण है वो शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से तो जो उनके भगवान अपने मित्रों का लीला करते हैं तो 5 और 10 साल के उम्र का रूप वो दर्शाते हैं। और जब वो घर में आ जाते हैं यशोदा माई नंद महाराज के साथ है तो फिर वह चाहते हैं कि अपना जो पुत्र एकदम बालक के रूप में है तो उनके सामने वे 5 साल से भी छोटा रूप है वो दर्शाते हैं। तो इस तरह से भगवान रस शेक कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से रस कर रहे हो। तो यहाँ पे अभी ये सब क्यों बता रहा हूँ, ये जो है देवहूति विचार कर रही है, चिंतन कर रही है कि ये जो इन्होंने इतना बड़ा उपदेश दिया मुझे, इतना ज्ञान दिया, यह जो व्यक्ति है वास्तव मेरी संतान से, मेरे मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और वह मेरी गोदी में खेले हैं। तो कहते हैं कितनी अद्भुत बात है कि आप इस तरह से लीला करते हैं। और वो कहते हैं कि यह मेरा मेरा बहुत सौभाग्य है कि आपका दर्शन करने का मुझे मौका मिला। तो जब तक उन्हें तत्वज्ञान नहीं बताया है तो तब तक देवहूति जानती है एक तरह से कि ये भगवान है, पर फिर भी उनको अपने पुत्र के रूप में ही देखती। पर अभी जब वो समझ जाती है इतना तत्वज्ञान सुनने के बाद कैसे ये स्वयं भगवान है, तो वो कहती है कि यह श्रवणात या स्मरणात, कि आपका श्रवण करने से, आपका स्मरण करने से, सवनाय कल्पते, मतलब कि अगर कोई स्वपच भी हो, कोई बहुत नीच जाति में जन्म लिया है, वह भी यज्ञ करने के लिए उचित हो जाता है, वो पात्र हो जाता है। यह आपको आपके स्मरण करने से इतनी शुद्धिकरण की शक्ति है, तो अगर आपका दर्शन किसी को करने को मिलता है तो कितना बड़ा भाग्य है। और फिर वो बताती है कि सबको दर्शन भी नहीं हो सकता है, केवल आपके नाम का उच्चारण शुरू भी कर सकता है। अहो पतशुपचुतो गरियान यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्त जो सस्नुदार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति येते। वो कहते हैं कि कितने आश्चर्य की बात है कि अहो पतशुपचुतो, अहो मतलब आश्चर्य की बात है, ठाकुर बताते हैं कि ये बहुत प्रख्यात श्लोक है, प्रभुपाद जी सपोर्ट करते थे और बताते थे किस तरह से अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, कोई बहुत नीचे कुल में जन्म लिया हो, अगर वह भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, तो फिर वह किसी ब्राह्मण से भी ऊंचा है। हे पुस्तपस्ते जो विसस्मरार्या ब्रह्मानुचर नाम गृणन्ति येते। क्यों ऊंचा है? क्योंकि जो उसने प्राप्त किया है भगवान का नाम का कीर्तन करना, वह जो तपस्या करता है, तीर्थ यात्रा करता है, जो यज्ञ करता है, उससे भी उसको फल नहीं मिलेगा। ऐसा क्या है? बाकी सब पुण्य कर्म है, उससे हम थोड़ा 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 थोड़े अच्छाई प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, 1000 रुपये कमाता है, 500 रुपये कमाता है, तो धीरे धीरे उस धनराशि वो प्राप्त कर रहा है। पर किसी व्यक्ति को किसी कारण से एकदम 1 करोड़ रुपये मिल गया, तो उसका मतलब क्या है? 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये सब अपने आप उसको मिल ही गए पहले से। तो ठीक उसी तरह से जो भगवान का नाम है वह कीर्तन करने का मौका मिल गया, तो बाकी सब अपने आप ही मिल गया इस तरह से। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पाश्चात्य देश में लोग भक्ति में लग जाते हैं, तो फिर कोई भारतवर्ष में भी कर्मकांड ब्राह्मण के रूप में कार्य कर रहा है, उससे भी ये ऊंचे स्तर पर प्राप्त कर देते हैं ऐसे भक्त जो है। तो प्रभुपाद जी जब अपने शिष्यों को देखे भारत में आए थे, क्या होता था, वृंदावन अपने शिष्य को लेके आए, और वृंदावन के लोग एक तरह से उनको गर्व था कि अभी हमारे जो हम जो कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, सारे विश्व भर लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो हम जैसे करते हैं वो सब कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने इन लोगों को ऐसे करवाया, इसलिए प्रभुपाद जी की सराहना करते थे। पर ये पाश्चात्य देश के भक्तों को देखते थे, ये तो नेचर, ये कैसे भक्ति कर सकते बस। तो फिर क्या होता था, ये लोग जो है ये नीचे जाते थे, तो वो कभी कभी वृंदावन की दुकानों में जाते थे, तो क्या होता था, तो वो लोग बोलते थे कि अगर कुछ खरीदना चाहते हैं, तो फिर वो भक्त को कहते ठीक है आप जो चाहते हैं वो ले लो। वो क्या करते थे, ठीक है आपको जो चाहिए हम यहाँ पे इस मेज पे रखेंगे, आप जो पैसे दे रहे मेज पे रखो और फिर आप ये चीज़ ले लो और हम पैसे देंगे। मतलब ये भक्तों को अछूत के जैसे उनसे व्यवहार कर रहे। तो प्रभुपाद जी जब बताया जा रहा, प्रभुपाद जी बोले कि देखो इनका भाव, वो कहते हैं कि आप अछूत है पर आपका पैसा अछूत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में बहुत बाह्य चेतना है कि व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति का कार्य क्या है ये महत्वपूर्ण है। कोई भक्ति कर रहा है तो वो व्यक्ति वो बहुत हित अच्छे मार्ग पे है। और यही भक्ति मार्ग की विशेषता है कि जो जाति वगैरह है उस ज्यादा महत्व नहीं है। असली महत्व क्या है? हृदय के भाव महत्व है। एक बार बताया तो पवाजी के शिष्य थे, वो एक वृंदावन के मंदिर में जाकर दर्शन ले रहे थे, ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ के पुजारी वहाँ पे आ गए, बोले कि आप ऐसे ही प्रार्थना करते रहो, और प्रार्थना करते रहोगे तो अगले जन्म में आपका वृंदावन में जन्म होगा और फिर आप भी ऐसे विग्रहों की पूजा कर सकते। तो भक्त प्रसन्न हो गए और वो कि हमको ऐसे आशीर्वाद मिल गया वृंदावन के पुजारी से। तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने जब आपने बताया, प्रभुपाद जी बोले आप उनको जाके बताओ कि अगर आप ऐसे राधा रमन की पूजा करते रहेंगे तो फिर आपका अमेरिका में जन्म होगा और आप इस्कॉन में प्रस्थापित होकर सारे विश्व भर में प्रचार कर पाओगे। इसका मतलब क्या है? ऐसे नहीं है कि इस्कॉन बहुत बड़ी है, पर प्रभुपाद जी का भाव ये था कि केवल एक रीति रिवाजों से भक्ति क्या है समझ में नहीं आती। भक्ति वह समझे समर्पण से समझनी। तो यही देवहूति अभी सारा ज्ञान प्राप्त करके समझ रही है, वो बता रही है अपनी शिक्षाओं में कि अगर आपका नाम कोई कीर्तन करने लग रहा है तो बाकी सारे धार्मिक कार्य है वो व्यक्ति कर चुका है पहले ही। मत इसका दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ है कि पिछले जन्म में उसने पहले ही कार्य कर लिया है, या फिर उसको वो कार्य किए बिना ही जो वो कार्य का फल है वो अपने आप मिल गया है। और चक्रवर्ती पाद बताते हैं जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। तो कहते हैं यहाँ पे जिह्वा के अग्र पे अगर नाम आ गया तो भी, तो वो कहते हैं ये ऐसे विशेषकर जिह्वा के अग्र पे क्यों बताया गया? वो बताते हैं कि भगवान का नाम इतना मंगलकारी है कि अगर भगवान के नाम का पूरा उच्चारण नहीं करेगा, उच्चारण की शुरुआत भी करेगा तो भी उससे भी शुद्धिकरण हो जाएगा। इसीलिए जिह्वा के अग्र पे कोई वाणी आती है या फिर उसके बाद में हम उसका पूरा उच्चारण, तो नाम का उच्चारण शुरू भी करेंगे तो उसका कल्याण हो जाएगा। और फिर इस तरह से देवहूति उनको भगवान का गुणगान करती है। और फिर जो भगवान कपिल है, फिर वे देवहूति से कहते हैं कि आपने जो बताया है वो मेरे बारे में सब सत्य है, और अभी आप मेरे स्मरण में लग जाइए और फिर मैं जाता हूँ दुनिया के कल्याण के लिए एक उदाहरण प्रस्तावित करके मैं ध्यान में लगना चाहता हूँ। तो देवहूति अपने पुत्र के, जो भगवान उनके पुत्र के रूप में, उनके आदेश को स्वीकार करती है। और फिर जो कपिल ऋषि है वो पहले दक्षिण की ओर जाते हैं और फिर पूर्व की ओर जाते हैं, और जो गंगा सागर के पास में वो ध्यान में लग जाते हैं। और जब वहाँ पर ध्यान में लग जाते हैं तो वहाँ पर जो ऋषिगण पहले से होते हैं वो बड़े आदरपूर्वक उनको वहाँ पर स्वागत करते हैं। और फिर वहां से ध्यान करते हुए कपिल देव सबका कल्याण कर लगते हैं। यहाँ पर देवहूति जो होती है वह अपने पुत्र के स्मरण में जो होती है, पहले उनके पिता चले गए अभी उनके पुत्र भी चले गए, तो ऐसा लगेगा कि वो पूरे मायूस हो गए, अकेले पड़ गए हैं। पर वास्तव में वो अकेले नहीं थी, क्योंकि भगवान जब जाते हैं तो अगर भगवान का दर्शन होता है, भगवान का की भक्ति होती है तो कभी अकेलापन नहीं होता है, भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो देवहूति बड़े ऐश्वर्य में रह रही थी, क्योंकि जो महल कपिल कर्दम ने बनाया था वो अभी तक था, पर और देवहूति उसी ऐश्वर्य में रह रही थी। पर वह भगवान के स्मरण में इस तरह से लग गई कि वह अपने सारे ऐश्वर्य से विरक्त हो गई, और भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने अपना जो शरीर परिवर्तित हो गया। ऐसे बताया गया कि वह आध्यात्मिक जगत में चले गई, उनका जो शरीर था वह विश्व के कल्याण के लिए एक नदी के रूप में परिवर्तित हो गया। और वह नदी, क्योंकि वह देवहूति के शरीर से उत्पन्न होती है और देवहूति के शरीर से ही भगवान उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वह नदी बड़ी मंगलकारी है। और इसको सिद्ध भट्ट कहते हैं, जहाँ पे वो जहाँ से देवहूति भगवत धाम लौट गई और फिर यहाँ पे कपिल मुनि आके ध्यान करने लग गए। और इसलिए इस तरह से सिद्ध पुरुषों में से सर्वश्रेष्ठ भगवद गीता में कपिल देव का उदाहरण आता है, सिद्धानां कपिलो मुनि। और कपिल देव की अनेक लीलाएं अलग अलग पुराणों में वर्णन आती हैं। जब गंगा की खोज, ऐसे खास करके महाभारत में रामायण में जो गंगा लीला का वर्णन आता है, संक्षिप्त रूप में बोलूंगा फिर विराम दूंगा। तो गंगा को, जो गंगा नदी है वह भगवान के चरण कमलों से आ रही है। गंगा जो है वो आध्यात्मिक जगत के बाहर जो करण सागर है उसका जल है। तो वामन देव जब अपना शरीर विस्तारित किया तो उन्हें ब्रह्मांड के ऊपर का भाग था उसको उनका पैर का नख लग गया। और भगवान के पैर का नख इतना शक्तिशाली है कि उसके स्पर्श से जो ब्रह्मांड के बड़ा मोटा आवरण है जैसे बताया गया है धावत अमृत में और पुराण में कि जो ब्रह्मांड का जो आवरण है वह अनेक 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 हजारों मील लंबा है, पर भगवान के स्पर्श से उसमें एक भेद आ गया, एक छेद आ गया और उससे जो करण सागर है वह नीचे आने लग गया। और जब करण सागर नीचे आ गया, जल नीचे आ गया, तो भगवान के पैर, भगवान का पैर वहीं पे था। कब आया था भगवान का पैर? वामन देव ने अपना रूप बड़ा विस्तारित कर लिया था। और तभी जब इस तरह से भगवान का पैर आ गया तो वो जो पानी है उधर से नीचे आने लग गया। और जब ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक ब्रह्मांड के ऊपर ही है, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने क्या किया, भगवान को अपने अपना जो आचमन का पानी है उससे भगवान के चरण चरणों का उन्होंने अभिषेक जैसे किया, तो वो भी पानी उसमें आ गया। और तो गंगा देव ने विचार किया कि यह इतना मंगलमय जल है, मैं भी इसमें प्रवेश कर लूँ। इससे करण सागर का पानी, जो ब्रह्मा जी के कमंडल का पानी और गंगा देव, इन तीनों का समन्वय होके जो नीचे आया उसको गंगा देवी कहते हैं। और कपिल देव के ही जब कपिल देव के मार्गदर्शन से वह गंगा जो है इस भौतिक जगत पे आती है। तो महाराज सगर जो होते हैं वह चाहते हैं कि गंगा देवी को स्वर्ग से नीचे लेके आए, पर जब वो एक यज्ञ कर रहे हैं तो महाराज सब वो यज्ञ कर रहे होते हैं, पर गंगा देवी बाद में आती है, जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो जो घोड़ा होता है वो गायब हो जाता है, उस घोड़े को छुड़ा लेता है। तो तभी वो सोचते हैं कि एक घोड़े को ढूंढना चाहिए, तो उनके जो पुत्र है वो ढूंढने लगते हैं कहाँ है घोड़े को। और क्या होता है, जो जिन्होंने घोड़ा चुरा लिया होता है, इंद्र ने चुरा लिया होता है वास्तव में, तो वो कपिल देव जहाँ पे होते हैं वहां पे उनके पास में घोड़े को लाके रख देते हैं। वो ध्यान कर रहे एक वृक्ष के नीचे, दूसरे एक वृक्ष वाले में घोड़े को बांध के लगा देते हैं। तो जब सगर तो जब ये सारे राजकुमार आते हैं और वो देखते हैं कि घोड़ा यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे यज्ञ वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, तो क्या होता है, वो क्रोध हो जाते हैं, सोचते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पे ध्यान में बैठा है वही चोर है, चोर है, और वो सोचते हैं उस पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। तो क्या है, यहाँ पे जो क्रोध है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि क्या होता है, क्रोध से हम क्रोध के वश में आ जाते हैं तो हम उचित निष्कर्ष नहीं निकाल पाते, हम हमारी धारणाओं के अनुसार कार्य करते हैं और उससे हम खुद का विनाश कर सकते हैं, दूसरों का विनाश कर सकते हैं। तो क्या होता है, वे जब कपिल देव की ओर आक्रमण करने आ जाते हैं तो कपिल देव अपनी आंखें खोलते हैं, और जैसे ये आंखें खोलते हैं तो आंखों से क्या होता है, ऐसा है जैसे आंखें खोल के देखते हैं और उससे वो जा रहे जो राजकुमार है जल के राख बन जाते हैं। और फिर उसके बाद में उनके जो संतान आते हैं वो आते हैं, अंशुमन वगैरह आते आते हैं, और क्या कहते हैं, इनको इनका कल्याण करने के लिए जो वो इस तरह से ऋषि ब्राह्मण पे आक्रमण करने के पाप से दूषित हो गए, तो उनको शुद्धिकरण करने के लिए गंगा जल जो है बहुत स्वर्ग से तपस्या करके नीचे लाते हैं। बहुत से राजाओं का उसमें वर्णन है कैसे कथा होते हैं, पर यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो कपिल देव जो है उनकी कृपा से, अभी वास्तव में क्या कपिल देव क्रोध हो गए थे, आंखें खोल ली उन्होंने और फिर सब जल गए, ऐसी बात नहीं है। आचार्यगण बताते हैं कि ऐसे नहीं, कपिल देव क्रोधित होकर उन्होंने अपनी आंखों से उनको जला दिया, वास्तव में जो एक राजकुमारों ने कपिल देव जैसे महान ऋषि पे के प्रति अपराध किया, तो उस अपराध के कारण ही उनके शरीर, उनका जो शरीर था, हमारे शरीर में अग्नि होती है, जठराग्नि पेट में होती है, जो कि हमारे हम जो अन्न खाते हैं उसको पचन कराती है। तो बताते हैं विष्णु सहस्रनाम में कि सप्ता अग्नि, सात प्रकार की अग्नियां होती है, तो जो शरीर में अग्नि होती है वह अग्नि अचानक ज्वलंत हो गई, और वो अग्नि ज्वलंत हो जाने के कारण वह जो राजकुमार थे विचल गए। तो कपिल देव वो क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने जो जिन्होंने उनके प्रति अपराध किया वे स्वयं उस अपराध के शिकार बन गए और उसके कारण उनका विनाश हो गया। और कपिल देव शांत रहे। और कपिल देव ने इस तरह से जो उनका जो अनुचित क्रोध था उसका उपयोग करके जो गंगा देवी को पृथ्वी में लाने में सहयोग किया। इस तरह से जो कपिल देव है वह उनको महाजन क्यों बताया गया है, अनेक कारणों से। सबसे पहले उन्होंने उपदेश दिया, विस्तारित उपदेश दिया है जिससे कि हम भौतिक जगत के मोह और बंधन से मुक्त हो सकते हैं। पर साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपनी माता का उद्धार किया, अपनी माँ को दिव्य ज्ञान दिया और इससे कि वे उनका उद्धार कर सकते। तो भागवतम की विशेषता यह है कि वो बताता है हमें कैसे हमारे सारे संबंध जो है वो संबंध को त्यागना नहीं है, भौतिक संबंधों को आध्यात्मिक बनाना है। जैसे हम देखते हैं कि ये तीसरे स्कंद में कैसे अपने पुत्र अपनी माँ का उद्धार करता है बताते हैं, और चौथे स्कंद में बताया कैसे माँ अपने पुत्र का उद्धार करती है। कौन सी कथा है वो, ध्रुव महाराज की कथा है। ध्रुव महाराज को अपनी माँ, उनकी माँ बताती है किस तरह से आप भक्ति में लग जाओ। तो यहाँ पे भाव भक्ति में क्या है, हमें भौतिक संबंध तोड़ने नहीं है पर सारे संबंधों को भगवान से जोड़ना है। तो यही ये भगवत यह कपिल देव सिखा रहे हैं, जैसे वो अपने माँ को उपदेश देते हैं और साथ साथ वह एक आदर्श सिद्ध के रूप में स्वयं तपस्या ध्यान में लगे रहते हैं जिससे कि हमें भी सारे ब्रह्मांड के लिए एक आदर्श होता है। तो इस तरह से जो कपिल देव हैं उन्होंने अवतार लेके सारे विश्व का कल्याण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं।
आज के क्लास के रिलेटेड नहीं है, मुझे दूसरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार है,